قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. मेरी जानिब से कह दो कि मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी बख्शिश और बड़ी रहमत वाला है। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और इसकी हुक्म बरदारी किए जाओ इससे कबल के तुम्हारे पास अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। ये थी आयत नंबर 53 से 54, 53 से 54। इसका उन्वान है वो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, और ये उसके प्यार का इजहार है कि कोई सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार के उसके सामने आ जाए नदामत भरा दिल लेकर, शर्मिंदगी वाला दिल लेकर, वो एक बार ये नहीं कहता कि आ जाए हो, बड़ी देर से आए हो। दुनिया वाले तो कह दें कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, अल्लाह कभी नहीं कहता। एक दफ़ा कोई बंदा दिल में तड़प पैदा करके आए, जिसके सीने में हसास दिल होता है ना, सेंसिटिव, उसको जब अल्लाह की सही तौर पे मार्फत होती है ना, तो उसको फिर एक गम लग जाता है कि मैं जो गुनाह कर चुकी हूँ उसका क्या बनेगा। और जब ख़ास तौर पे किताब से ताल्लुक़ जुड़ता है ना, कुरान पाक से, तो इंसान परेशान होता है, चलो अब तो ठीक है, ये पिछलों का क्या होगा। उस वक्त फिर इंसान तड़प के अल्लाह से पुकारता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ऐसे ही बंदों को खुशखबरियाँ देता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम। लफ्ज़ असरफू अला अन्फुसिहिम पे भी गौर कीजिएगा, तुम अपने नफ्सों पे इसराफ़ कर चुके। इसराफ़ क्या होता है? ज्यादती, कसरत से किसी चीज़ को करना, यानी तुम गुनाह करके अपने ही नफ्स को जेरे बार कर चुके। आओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, करना क्या है, बस तौबा तौबा कहते जाओ। नहीं, वह अनीबू इला रब्बिकुम, ये जो अनीबू इला रब्बिकुम है ना, ये नई जिंदगी है, तौबा के बाद वाली ज़िंदगी। जब इंसान तौबा के पानी में नहा लेता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे तवक्को करते हैं कि अब वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखे। आपका घर गंदा होता है ना, थोड़ा थोड़ा गंदा होता है तो आप साफ़ कर लेते हैं, जब बहुत गंदा होने लगता है ना, तो बाज़ दफ़ा ये फीलिंग आती है अब मैं नहीं कर सकती, इट्स टू मच। फिर नतीजा क्या होता है? और गंदा होने लगता है और ख़राब होता है, और बाज़ दफ़ा आप ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकती अब किसी और को बुलाऊंगी, और बाज़ दफ़ा इतना गंदा होता है कि वो चीज़ फेंकनी पड़ती है। आप किसी मशीनरी को इस्तेमाल करें, धोएं ना, इस्तेमाल करते जाएं, नतीजा क्या होगा? बाज़ दफ़ा उसके अंदर रस्ट आ जाएगा, बाज़ दफ़ा उसके ऊपर स्टेन्स आ जाएंगे, इतनी गंदी होगी उसमें जर्म्स पैदा होंगे। इसी तरह जब इंसान गुनाहों पे गुनाह करता जाता है ना, करता जाता है, तो एक नतीजा गुनाह का ला मुहाल है, अंडरस्टूड है, क्या कि गिल्ट पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी गुनाह क्या है, तो आपने फरमाया मा हा कभी ही फी नफ्से, जो तेरे दिल पे बोझ डाले। ये बोझ को इंग्लिश में आप डिप्रेशन कह लें, प्रेशर्स होते हैं ना, बोझ डालता है, हर गुनाह एक प्रेशर डालता है। अब जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, तो इंसान फिर स्ट्रेस आउट होता है, परेशान होता है, ये क्या किया, फिर झुंझलाता है। फिर एक तरीका तो क्या था कि पलट आए, आ जाए रब की तरफ, लेकिन अमूमन शैतान उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है, नो नो, इट्स टू मच, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। फिर आप और गुनाह करते हैं, ये सोच के अब कपड़े गंदे तो हो गए, अब और गंदे कर लो, और गंदे कर लो, अब क्या करना है। और इस तरह बंदा गुनाहों के गिल्ट में इतना दूर जाता है कि अल्लाह ताला फिर उसको पुकारता है, पलट के आओ, एक एक कदम आओ। अब देखिए कि गुनाह छोड़ने वाला जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी तवज्जो का मतलूब होता है, फेस में शिटल भेजी जाती है, तो एक दफा आप उसको ग्रेविटी की हद से निकलने दे, फिर वो संभल जाएगा। शुरू में हिलती है चीज, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो एकदम गड़गड़ाहट की आवाज आती है, फिर बाद में चलती है तो कुछ नहीं होता। जो बंदा अपने ऊपर से गुनाहों का बोझ उतारता है ना, उसकी भी टांगे कांप रही होती है, ऐसे वक्त में उसको बड़े सहारे की जरूरत होती है, बड़े प्यार से कोई के फिर क्या हुआ, आओ तो सही, पलट के तो आओ, देखना अल्लाह तुम्हारी कितनी कदर करेगा, उठो उठो। जैसे बच्चा जब शुरू करता है ना चलना, तो गिरता है, तो माँ कैसे उसको चलाती है, आओ आ जाओ, ऐसे उसको खड़ा करके फिर इशारे करती है, फिर बच्चा चलता चलता बीच में एकदम गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर भागने लगता है, यही गुनाहों का हाल है। हाँ, एक बात बहुत तवज्जो की है, इसी बच्चे की बात से ही एक मिसाल जहन में आई, आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखिए कि एक बच्चा पहले लेटा रहता है, सोचिए अब जरा अपना बचपन या किसी का, फिर ऐसा ऐसा नेचुरल बात क्या है कि कुछ महीने का होने के बाद बैठने लगता है, फिर उसके बाद तीसरी स्टेज क्या आती है कि वह क्रॉलिंग करता है, फिर अगली स्टेज क्या आती है कि खड़ा होता है सहारे के साथ, फिर उससे अगली स्टेज क्या होती है कि बगैर सपोर्ट के खड़ा होता है, और उसके बाद क्या क्या अब एक कदम उठाए, उसे माँ मिठाई बांटती है, आज इसने पहला कदम रखा है, मियाँ घर आते हैं तो बेगम कहती है आज इसने पहला कदम रखा है, अच्छा मिठाई खाएंगे, और उससे अगले दिन शुरू होती है आज ये तोड़ दिया, आज ये तोड़ दिया। ये तो एक नेचुरल चीज है ना, माँ भी मुतमईन है, बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कुछ कर रहा है, कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि कोई बच्चा अगर 5 साल का भी हो जाए और सिर्फ क्रॉल ही करे, तो फिक्र की बात है कि नहीं, बैठे ही ना, किस बात की अलामत है कि ये अब नॉर्मल है, ये हैंडीकैप है। यही मामला तौबा का है। जब इंसान नई नई बात सुनता है ना, खौफ आता है। लेटा हुआ था ना आराम से, मस्त था, ऐश में था, अब बैठ जाए, थोड़े दिन और सुनेगा, थोड़ी बात समझ आएगी, फिर खड़ा होगा, स्टैंड लेगा, फिर कदम बढ़ाएगा, फिर भागने लगेगा नेकियों में। लेकिन वो लोग जो 4 5 6 साल से अल्लाह की किताब से जुड़े हुए हैं और अभी तक सिर्फ क्रॉल कर रहे हैं ना, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। इस पे गौर करने की जरूरत है। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि सारी जिंदगी कुरान से गुजार देते हैं लेकिन क्रॉलिंग में ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तौबा नहीं है, ये भी एक धोखा है। हम कहते हैं वी आर टेकिंग आवर टाइम, टेक योर टाइम, बट कितना बता दें, कितना चाहिए। हर बंदा अपने एक एक मिनट को अगर कीमती समझे ना, तो आप देखिए कि वो हर दिन के बाद अगली दिन तौबा जो करेगा वो उसकी पहले से खूबसूरत होगी। कोई गंदा रह सकता है? आप बताइए, जिसके अंदर सफाई की आदत हो वो गंदा रह सकता है? वो खुद, कोई नहीं करेगा ना, वो उठ के खुद साफ करना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हमें दूसरे साफ करते हैं, कभी कभी हमें खुद को अपने आप को साफ करना पड़ता है। असल ये कि गुनाहों का बोझ लेके ना फिरे, इसलिए कि इस बोझ के साथ लदे हुए लोग जो है ना, वो कल क्यामत के दिन बड़े बुरे हाल में होंगे। अल्लाह एक आंसू पे भी बंदे को माफ कर देता है, शर्त क्या है कि उसके बाद वह अनीब उला रब्बी को रजू, अनीब नौब से, मुनीब उनीब पीछे पड़ चुके, अल्लाह की तरफ झुकना, पलटना। और उसके बाद तीसरा मरहला है वास्लिमो, 3 स्टेप्स हैं। पहला है इसराफ अला नफ्स, अपने नफ्स पे ज्यादतियां की। उसके बाद है ला तकना तुम्हें रहमत इल्ला, और उसके बाद चौथी चीज है अनीबू इला रब्बिकुम, और फिर अगली चीज है वस्लिमो इला रब्बिकुम। ये 4 मरहले हैं तौबा के। पहले एडमिट करो गुनाह किया है, हाँ अल्लाह ताला माफ कर दे, कन्फेस करना, आई डिड रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग, आई एम सिनर, आई एम सिनर। फिर उसके बाद इरादा करें बदलना अपने आप को, बस इरादा करके नो, फिर कोशिश, और कितनी कोशिश, जितनी कोशिश की जरूरत है, और फिर आखिरी दम तक उसको रखें। देखिए घर साफ कर लें तो क्या हो गया साफ, कभी नहीं करना पड़ेगा दोबारा, बार बार करना पड़ता है। जिसे घर साफ होता है ऐसे लगता है कि वाह अब तो ये कभी नहीं खराब होगा। आप सिर्फ एक हफ्ता गुजरने दें और केयरलेसली हो, तो दूसरे ही दिन देखें चीजें बिखरी होंगी, मट्टी पड़ रही होगी, आपको साथ साथ साफ करना पड़ता है। आप एक दफा साफ कपड़े पहन लेते हैं तो क्या आप ये साफ कपड़े हमेशा साफ रहेंगे? 2 3 दिन के बाद बदलने पड़ेंगे। तो ये तौबा और गुनाहों का मरहला साथ साथ चलता है जिंदगी के, इसको एक लम्हे में नहीं छोड़ सकते कि मैंने आज तौबा कर ली थी, आज शबे कदर में मैंने तौबा कर ली, अब सारी जिंदगी काम करूंगी और बस ईद की रात ही देखना मैं क्या करती हूँ, अगले साल फिर मैं जाके तौबा कर लूंगी। याद रखिएगा, एक दफा हम रो रो के तौबा कर लेते हैं ना, और अगर फिर ईद के बाद रमजान के बाद वही मसला है ना, तो अल्लाह अगले साल रोने की भी तौफीक छीन लेगा। गेट आउट, तुम इस काबिल ही नहीं हो के रो मेरे सामने। फिर अल्लाह इबादत से दिल उठा लेता है, आपका दिल ही नहीं चाहता नमाज पढ़ने को। आप वैसे अच्छे भले होंगे, नमाज का वक्त आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, आई एम सिक, आई एम ड्रॉजी, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी। ये जो कैफियत अल्लाह छीन लेते हैं ना नेकी की, ये अल्लाह का एक इंतकाम होता है। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला ये तौफीक छीने, इंसान फौरन अपने आप को सीधा कर ले। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने नफ्सों पे इसराफ ना करें और सच्ची और पक्की तौबा करें। वत्तबी अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। इन आयतों को बड़े गौर से सुनिएगा आप, जो हिस्सा में पढ़ने वाली हूँ, बल्कि अब इसके बाद आखिर तक जो सूरत का हिस्सा आप देखेंगे। और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इत्तला भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही रहा। औ तकूल लौ अन अल्लाह हदानी लकुंतु मिनल मुत्तकीन। या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में होता। या अजाब को देख कर कहे काश के किसी तरह मेरा लौट जाना होता तो मैं भी नेक लोगों में होता। 3 हसरतें हैं इन आयतों में। बला कद जाअत कल आयाती, हाँ, बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी जिन्हें तूने छुटलाया और गुरूर किया और तकबुर किया, और तू था ही काफिरों में से, और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा, तो आप देखेंगे कि क्यामत के दिन इनके चेहरे स्याह होंगे। क्या तकबुर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं? और जिन लोगों ने परहेजकारी की, इन्हें अल्लाह ताला इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, इन्हें कोई दुख छू भी ना सकेगा और ना ही वो किसी तरह गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगेबान है। आसमानों और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 55 से 64। पचपन से 64 इन आयतों का टॉपिक लिखेंगे। हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक में कमी की। इन सारी हसरतों में जो सबसे बड़ी हसरत है ना, उसको हाईलाइट करवाऊंगी। आयत नंबर 56 में है, या हसरत आला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। क़यामत के दिन इंसान हसरत करेगा कि मैंने अल्लाह के हक में कमी की थी। करते हैं कमी, अल्लाह का हक देते हैं दुनिया को। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन इंसान इस पर रोएगा चीखेगा कि मैंने अल्लाह के हक में कमी कर दी थी। मैंने अल्लाह का वक्त भी लोगों को दे दिया, मैंने अल्लाह के हिस्से का माल भी लोगों को दे दिया, मैंने अल्लाह के हिस्से की स्किल्स भी दुनिया को दे दी। आज अफसोस हो रहा है कि काश कोई मुझे वापस जाने को कहे और मैं दोबारा वही काम करूँ कि मैं अपने रब का हक अदा कर सकूँ। और हकीकत क्या है कि लोगों का ऐसा हाल क्यों होगा? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, जिसका तذکرہ आगे आने वाला है। वलकदू इलैका वइलल मिन कब्लिक, यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल जाया हो जाएगा और बिल यकीन तू नुकसान पाने वालों में हो जाएगा, बल्कि तो अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। ममा कदर अल्लाह हक्का कदरी, और इन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की। वलर्दु जमीअन कब्ज़तुहु, और सारी ज़मीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसका लोग इसे शरीक बनाए। व नुफिखा फिस्सूर, और सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमानों और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह तला चाहे फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी और नामे आमाल हाजिर कर दिए जाएंगे। नबियों और गवाहों को बुलाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक फैसले कर दिए जाएंगे और वो जुल्म न किए जाएंगे। वुफियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 65 से 70, 65 से 70। इन आयत का टॉपिक है क़यामत के दिन ज़मीन अल्लाह के नूर से चमकेगी। ये दुनिया की जो ज़मीन है ना, ये सूरज की वजह से चमकती है। क़यामत के दिन सूरज तो होगा नहीं, उस दिन क्या होगा? अल्लाह का जलवा होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब अपना जलवा दुनिया में करेंगे, क़यामत के दिन के अंधेरों में रोशनी हो जाएगी। तसव्वुर में लाएं ज़रा, कोई अंधेरा दिन और एकदम बहुत तेज़ लाइट जल जाए, क्या हाल होता है? अल्लाह नूर उस समावाती वलर, ज़मीन व आसमान का नूर है, दुनिया में उसने अपनी रोशनी रखी है, लेकिन क़यामत के दिन हकीकत में अल्लाह ताला के चेहरे की रोशनी और उससे दुनिया, उस वक़्त की ज़मीन जो है वो चमकने लगेगी और उससे नामे आमाल आएंगे और लोग अपने आमाल नामों से मुलाकात करेंगे। क़यामत के मराहिल को जब हम सुनते हैं ना, तो वाकई ऐसे लगता है कि वो एक नई ही दुनिया है। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के गौल जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। जब वो इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां के निगेबान इनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे? और ये जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها, कहा जाएगा अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ जहाँ हमेशा रहेंगे, बस सरकशों का ठिकाना बहुत बुरा है। और इसके बरक्स वसीक الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا, और जो लोग अपने रब से डरते थे इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक के जब इनके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगेबान इनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ना वादहु, ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस जमीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें मुकाम करें, बस अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हम्द और तस्बीह करते हुए देखेगा और इनमें इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। ये थी आयत नंबर 71 से 71 से 75। इसका अनवान है जन्नत और जहन्नुम में गिरोहों में जाओगे। ये है सूरत जुमर के नाम की वजह। अल्लाह ताला ने यहाँ उसी नाम को रखा जिसको सूरत के अंदर रखा जुमर। जुमर गिरोह को कहते हैं, ट्रूप के मानों में, गिरोह के मानों में, लश्कर के मानों में। दुनिया में जो लोग अपने साथियों के साथ रहते थे ना, ऐसे लोगों को जन्नत में भी अल्लाह ताला साथ ही ले जाएगा। जिनकी कंपनी दुनिया में अच्छी थी वो वहाँ भी अच्छी जगह होंगे, और जिनकी कंपनी दुनिया में बुरी थी वो वहाँ भी अपने बुरे साथियों के साथ होंगे। तसव्वुर में लाएं ज़रा, हम किन के साथ होंगे? क़यामत का दिन बहुत वहशतनाक दिन है।